110वीं कारिका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तस्य करण सामर्थ्याद वेग प्रचय धर्मिणः संनिपाताद विभज्यन्ते सारवत्योपि मूर्तयः। तस्य माने तस्य वायु हो, माने उस वायु का, जिस वायु की चर्चा पिछली कारिका में हुई थी कि वायु जो है वही शब्दत्व को प्राप्त करती है, तो तस्य वायु हो उस वायु का करण सामर्थ्यात, करण सामर्थ्यात माने प्रयत्न सामर्थ्यात, प्रयत्न के सामर्थ्य से माने प्रयत्न के आधार पर वेग प्रचय धर्मिणः, वह जो वायु है ना वह वेग प्रचय धर्मी बनती है। वेग तो आप जानते ही है ना, माने ये शीघ्रता, और प्रचय का अर्थ है संघात माने समूह, तो वह जो वायु है उसमें वेग उत्पन्न होता है, माने गति, वेग माने गति कर लीजिए, तो वेग में गति उत्पन्न होती है और उसमें संघात उत्पन्न होता है, माने वायु का जो है ना ग्रुप बनता है, वायु का समूह बनता है। फिर संनिपाताद विभज्यन्ते सारवत्योपि मूर्तयः, और फिर उसमें क्या होता है संनिपात होता है, संनिपात होता है माने अभिघात होता है, उच्चारण स्थान और करण के द्वारा उसमें संनिपात होता है माने अभिघात होता है, टक्कर होती है। फिर विभज्यन्ते सारवत्योपि मूर्तयः, फिर उसमें जो है ना सारवती मूर्ति उत्पन्न होती है, सारवती मूर्ति माने आकार प्रकार, और सार का अर्थ यहाँ पर करेंगे क ख ग घ इत्यादि, तो क ख ग घ इत्यादि जो मूर्ति है, इत्यादि जो आकार प्रकार है, वह आकार प्रकार उस वायु माने वेग प्रचय धर्मी जो वायु है उसमें सारवती मूर्ति उत्पन्न होती है, माने ककार खकार आदि जो है ना आकार का धारण उसमें होता है। फिर से एक बार जान लीजिए, तस्य कर्ण सामर्थ्याद वेग प्रचय धर्मिणः संनिपाताद विभज्यन्ते सारवत्योपि मूर्तयः, कि वह जो वायु है, वह जो प्रेरित वायु है, वह करण के सामर्थ्य से माने प्रयत्न के सामर्थ्य से, प्रयत्न के कारण वेग प्रचय धर्मी होता है, माने उसमें वेग उत्पन्न होता है और प्रचय उत्पन्न होता है, प्रचय माने बताया समूह, और वेग माने गति, माने वायु में गति आती है और उसमें वेग वायुओं का समूह बनता है, और फिर उससे उसके कारण माने गति के कारण और समूह होने के कारण जो है अभिघात होता है, संनिपात होता है, और संनिपात होने के बाद उसमें सारवती मूर्ति जो है ना वह उसमें उत्पन्न होती है, माने ककार ध्वनि खकार ध्वनि गकार ध्वनि ये ध्वनियाँ जो हैं उसमें उत्पन्न होती हैं। इस तरह से दो कारिकाओं के द्वारा, नवीं और दसवीं कारिकाओं के द्वारा ये जो वायु शब्द बनती है उसको बताया गया। अब 111वीं कारिका जो है उसमें अनु वाला मत बताया जाएगा कि अनु जो है कैसे जो है शब्द के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें कहा कि अणवः सर्वशक्तित्वाद भेद संसर्ग वृत्तयः छाया तपतमः शब्द भावेन परिणामिनः। अणवः सर्वशक्तित्वात्, अणु जो होता है ना वह सर्वशक्तिमान होता है, माने सर्वशक्तिमान इसलिए अणु होता है क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी सृष्टियां हैं, जितनी सृष्टि है, वह सब के सब जो है ना अणु से ही उत्पन्न है। तो आकाश में जो स्थित सूक्ष्म शब्द है, वही आकाश में स्थित सूक्ष्म शब्द यहाँ पर अणु के रूप में लिया जाएगा। तो अणवः माने आकाश स्थित सूक्ष्म शब्दाः, आकाश में स्थित जो सूक्ष्म शब्द हैं वही वो सर्वशक्तिमान होता है, वह सब कुछ जो है ना सारे शब्द जो हैं उसी सूक्ष्म शब्द से उत्पन्न होते हैं। भेद संसर्ग वृत्तयः, और उसमें जो वृत्ति होती है माने व्यापार जो होता है उस अणु का वो कैसा, तो भेद और संसर्ग वृत्ति होती है, भेद मतलब विभाग और संसर्ग माने संयोग, तो उन अणुओं में वह जो सूक्ष्म शब्द है आकाश में स्थित सूक्ष्म शब्द उसमें क्या होता है कि परस्पर विभाग और संयोग होता है, वही है भेद और संसर्ग होता है, भेद माने विभाग और संसर्ग माने संयोग, और ऐसा होने के कारण उस सूक्ष्म शब्दों में जो परस्पर विभाग और संयोग होता है उसके कारण छाया तप तम शब्द भावे न परिणाम न, वह संयोग विभाग होने से अणुओं में क्या होता है कि परिणाम होता है, माने उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो जितने भी तरह के शब्द हैं वो सारे शब्द जो है ना उससे उत्पन्न होते हैं, माने अणुओं के विभाग संयोग होने से सारे शब्द परिणामी होते हैं, माने उत्पन्न होते हैं, स्थूल शब्द का स्वरूप धारण करते हैं। ऐसा है कि पहले वह सूक्ष्म शब्द होता है और जब उसमें संयोग विभाग होता है तब वह सूक्ष्म शब्द स्थूल शब्द बन जाता है, और वह जो स्थूल शब्द होगा वह अनेकों प्रकार का होगा। इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत रूप में दिए हैं कि छाया तप तमह शब्द भावे न परिणाम न। अब देखिए, छाया आतप, आतप मतलब धूप, तमह माने अंधकार, ये जो तीनों जो है ना परस्पर विरुद्ध है, परस्पर विरोधी है, क्योंकि छाया जो है वह जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा वहाँ पर छाया होगी, और आतप धूप जहाँ होगी वहाँ पर जो है ना अंधकार नहीं होगा। तमह माने अंधकार, जहाँ अंधकार होगा वहाँ पर आतप नहीं होगा। तो इस तरह से जितने भी शब्द हैं वह विरोधी शब्द हों या सहयोगी शब्द हों, सब तमाम प्रकार के जो शब्द हैं वो सारे शब्द इसी से उत्पन्न होते हैं। किससे? अणुओं के भेद और संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। अणुओं मतलब आकाश में स्थित जो सूक्ष्म शब्द है उनमें जो भेद संसर्ग होता है, मान विभाग और संयोग होता है, उन विभाग और संयोगों के कारण छाया आतप तमह आदि जितने नाना शब्द हैं वो सारे शब्द परिणामी ना परिणामी होते हैं, माने उत्पन्न होते हैं। इस तरह से अणु से जो शब्द होता है उत्पन्न होता है उसको बताया। फिर इसी बात को 112वीं कारिका में फिर बताते हैं कि स्वशक्तो व्यज्यमानायाम प्रयत्नेन समीरिताः अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः। यहाँ एक संदेह हो सकता है, शंका हो सकती है कि अणु जो है वह जो सूक्ष्म शब्द है आकाश में वह तो सदा विद्यमान रहने वाला तत्व है, तो जब सदा विद्यमान रहने वाला वह तत्व है तो हमेशा ही शब्द जो है सुनाई देते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम जब उच्चारण करते हैं, जब उच्चारण स्थानकरण के साथ जो है अभिघात होता है तभी शब्द सुनाई देता है, उससे पहले तो सुनाई देता नहीं है, तो ऐसा कैसे? तो इसी शंका को मिटाने के लिए इसमें बताया गया कि स्वशक्तो व्यज्यमान आयाम। यहाँ पर स्वशक्ति का अर्थ लेना है कि शब्द स्वरूप की जो प्राप्ति होती है उसमें जो बीज शक्ति है, शब्द रूपता प्राप्ते है या बीज शक्ति ही, वह जो बीज शक्ति है उसी को यहाँ पर स्वशक्ति शब्द से लेना है। माने स्थूल शब्द को प्राप्त कराने वाली जो बीज शक्ति है, शब्द में रहने वाली जो बीज शक्ति है, वह बीज शक्ति व्यज्यमान आयाम, वह जब व्यज्यमान होती है माने उद्भूयमान होती है, उद्भूत होती है, प्रादुर्भूत होती है, तो शब्द स्वरूप सूक्ष्म स्थूल शब्द को प्राप्त करने वाले प्राप्त कराने वाली जो बीज शक्ति है वह बीज शक्ति जब व्यज्यमान होती है माने उद्भूत होती है, प्रकाशित होती है, और प्रयत्न न समीरिता है, और प्रयत्न के द्वारा वह जब समीरित होता है माने प्रेरित होता है। प्रयत्न का तात्पर्य यहाँ क्या लेना है कि विवक्षा से, विवक्षा मैं बता चुका हूँ अर्थ, माने अर्थ को बताने के लिए शब्द का उच्चारण करने की जो इच्छा है उसी को विवक्षा कहते हैं। तो विवक्षा से उत्पन्न जो कायाग्नि से उठी, कायाग्नि के प्रेरित करने से ऊपर की ओर जो प्रेरित वायु है, ऊपर की ओर गमन करने वाली जो वायु है उसी वायु के लिए यहाँ पर कहा गया प्रयत्न न समीरिता, प्रयत्न के द्वारा जो समीरित वायु है, प्रेरित वायु है, वह अभ्राणीव प्रचीयन्ते, ताकि अभ्र की तरह प्रचीयन्ते, प्रचीयन्ते माने घनी भावे न शब्द रूपताम प्रतिपद्यन्ते, या समूहयन्ते कह लीजिए, प्रचीयन्ते माने समूहयन्ते माने उसका समूह होता है। अब इसका दृष्टांत देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया अभ्राणीव प्रचीयन्ते। अभ्रम कहते हैं बादल को, मेघ को, तो मेघ जो है ना कैसे तैयार होता है, तो छोटे छोटे जो जल कण हैं वो सारे कण जब समूह बन जाते हैं उनके, तब जा करके बादल जो है वह होता दिखता है और बादल बनता है। उसी तरह से शब्दाख्या परमाणु, शब्दाख्य जो परमाणु है माने सूक्ष्म शब्द जो है आकाश में रहने वाले सूक्ष्म शब्द, वो जब प्रचित होते हैं माने समूहित होते हैं, उनका जब जो है ना समुदाय बन जाता है, ग्रुप बन जाता है बादल की तरह, तब जा करके जो है ना शब्द सुनाई देता है, उससे पहले शब्द सुनाई नहीं देता है। जैसे बादल तभी बरसता है जब उसका समूह बनता है जलकणों का, उसी तरह से शब्द सूक्ष्म शब्दों का जब समूह बनता है तब जा करके वह शब्द सुनाई देता है, समूह बनने से पहले शब्द सुनाई नहीं देता है, ये इस कारिका में बताया गया। एक बार फिर देख लें, स्वशक्तो व्यज्यमानायाम प्रयत्न न समीरिता, प्रयत्न के द्वारा समीरित जो शक्ति है शब्द स्थूल शब्द प्राप्ति करने की शक्ति बीज शक्ति, वह जब व्यज्यमान होती है प्रादुर्भूत होती है, कैसे प्रादुर्भूत होती है उसका प्रोसेस बताया गया कि कैसे वो वायु ऊपर उठती है, कैसे मूर्धा से टकराती है, कैसे मुंह में फैलती है, टक्कर होने से वह शक्ति जो है बीज शक्ति वह व्यज्यमान होती है, और उसके होने से क्या होता है कि शब्दाख्य जो परमाणु है माने शब्द नामक जो परमाणु है वह परमाणु एकत्रित हो जाती है, उसका ग्रुप बनता है, और फिर उसके ग्रुप से बन जाने पर वह जो है सुनाई देता है या उसका उच्चारण होता है, अभ्राणि इव अभ्र की तरह बादल की तरह। इस तरह से इन दो कारिकाओं के द्वारा, ये 11वीं और 12वीं कारिका के द्वारा अनु से जो शब्दत्वापत्ति होती है उसको बताया गया। अब पहला जो मत था कि वायु शब्द है वह यह मत था शिक्षाकार का, और अणु शब्द है यह मत था किसका, जैन दार्शनिकों का। इसमें यही है कि इतना ये समझना है कि अगर हम अणु का अर्थ शब्द अणु कर लें, शब्द परमाणु कर लें ना, तो ये जैन दर्शन का मत होगा, और अणु का अर्थ जो है ना सूक्ष्म शब्द करेंगे, आकाश में स्थित सूक्ष्म शब्द, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा जैन दर्शन के आधार पर, जैन दर्शन के अनुसार तो अंतर होगा। तो दोनों तरह की व्याख्या शास्त्र में उपलब्ध होती है। अगर हम शब्द परमाणु कहेंगे तो वो हो गया जैन दर्शन का मत, अगर शब्द परमाणु नहीं कहेंगे सीधे कहेंगे सूक्ष्म शब्द कहेंगे, तो वो फिर जैन दर्शन का फिर वो मत नहीं होगा, वो फिर किसी अन्य शास्त्र का मत होगा, किसी अन्य आचार्य का मत होगा। अब तीसरा जो पक्ष है वही सिद्धांत पक्ष है व्याकरणों का, पातंजल दर्शन सम्मत पक्ष है कि ज्ञान ही जो है वह शब्द है, ये वायु शब्द नहीं है, ये अणु शब्द नहीं है। अब इस सिद्धांत को आगे की कारिका में बताते हैं। 113वीं कारिका देखिए, अथेदम आंतरम ज्ञानम सूक्ष्म भागात्मना स्थितम व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते, काकि अथ माने अनंतर माने कि इन मतों को पढ़ने के बाद समझने के बाद इसके बाद इदम आंतरम ज्ञानम, यह जो आंतर ज्ञान है, आंतर माने अंतःकरण में रहने वाला ज्ञान, वह ज्ञान कौन सा ज्ञान लेना है, तो अर्थ विषयकम ज्ञानम माने अर्थ ही जिसका विषय है ज्ञान का, ऐसा ज्ञान, तो अंतःकरण में स्थित जो अर्थ विषयक ज्ञान है उसी अर्थ विषयक ज्ञान को यहाँ पर आंतरम ज्ञानम कहा गया है। तो यह जो आंतर ज्ञान है माने अंतःकरण में रहने वाला जो अर्थ विषयक ज्ञान है, वह ज्ञान सूक्ष्म बागात्मना स्थितम, वह अर्थ विषयक ज्ञान क्या होता है कि अंतःकरण में सूक्ष्म बागात्मना स्थितम, सूक्ष्म बाक के रूप में स्थित रहता है, बाक माने शब्द, तो सूक्ष्म शब्द के रूप में स्थित रहता है, कौन माने अर्थ विषयक जो ज्ञान है वह ज्ञान अंतःकरण में सूक्ष्म बाक के रूप में स्थित रहता है। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य, और वह जो ज्ञान है अपने स्वरूप को व्यक्तये अभिव्यक्त करने के लिए, अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए शब्दत्वेन विवर्तते, शब्द के रूप में वह विवर्तित होता है माने शब्द के रूप में वह प्रकटित होता है। तो क्या हुआ इस कारिका का सारांश कि अर्थ विषयक जो ज्ञान है वह अर्थ विषयक ज्ञान सूक्ष्म वाक के रूप में हृदय में स्थित रहता है और वही सूक्ष्म वाक वही सूक्ष्म शब्द जो है अपने स्वरूप को व्यक्त करने के लिए शब्दत्व को प्राप्त करता है। ज्ञान ही जो है शब्द बन जाता है। क्यों बनता है? तो अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए। ये 113वीं कारिका में आपको बताया। फिर आगे जो है ना 114वीं कारिका में उसका थोड़ा सा जो है ना प्रोसेस बताएंगे कि ज्ञान पहले तो मोटा मोटी सिद्धांत इन्होंने बताया कि ज्ञान ही शब्द बनता है। अब उसका जो उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को 114वीं कारिका में बताया गया कि सौ मनोभाव मापद्य तेजसा पाकमागत वायुम आविशति प्राणम अथासो समुदीर्जते। कहा कि सह माने अंतस्थित सूक्ष्म शब्द है। वो जो अंतःकरण में स्थित जो सूक्ष्म शब्द है वह कौन सा सूक्ष्म शब्द? तो वही आंतर ज्ञान वाला अर्थ विषयक जो ज्ञान है वह सूक्ष्म शब्द के रूप में हृदयाकाश में स्थित रहता है। तो वही शब्द मनोभावम आपद्य माने मन के साथ जो है ना युक्त होकर के तेजसा पाक मागत। तेजसा माने कायाग्नि ना शरीर में रहने वाली जो अग्नि है कायाग्नि उससे पाकम आगत है उससे पाक को प्राप्त करता है। पाक को प्राप्त करता है मतलब ऊपर की ओर जो है ना वह चलना शुरू करता है। फिर वायुम आविशति प्राणम अथासो समुदीर्जते और फिर वह जो हृदयस्थ वायु है वह वायु ऊपर की ओर चल करके और नाना उच्चान स्थान प्रयत्न से के कारण जो है समुदीर्जते माने उच्चार्जते उच्चारित होता है। तो वायुम आविशति प्राणम अथासो समुदीर्जते प्राणम वायुम आविशति वह जो ज्ञान है वह ज्ञान मनोभाव को प्राप्त करके माने मन के साथ मिल करके तेजसा पाक मागत और कायाग्नि के द्वारा पाक को प्राप्त करके। पाक का अर्थ यहाँ पर रसोई नहीं लेना है, पाक का अर्थ लेना है कि ऊपर की ओर जो है ना प्रेरित होकर के ऊपर की ओर गति को प्राप्त करके प्राणम वायुम आविशति प्राण वायु के संपर्क में आता है वह ज्ञान मन के माध्यम से और फिर वह प्राण वायु जो है वह समुदीर्जते वह शब्द के रूप में जो है उच्चारित होता है। तो ज्ञान पहले अर्थ विषयक ज्ञान वह ज्ञान सूक्ष्म वाक के रूप में स्थित रहता है वह मन के साथ मिलकर के तेज के साथ मिलकर के कायाग्नि के साथ मिलकर के प्राण वायु के साथ मिलकर के फिर जो है ना वही वर्ण के रूप में शब्द के रूप में उच्चरित होता है। यहाँ पर ये प्रोसेस बताया गया। तो पाठ यहीं पर स्थगित करते हैं।